ओम शांति। तो हमने अभी सुना होलिस्टिक थिंकिंग, तो बीच में एक एग्जांपल छूट गया। एक बार चार अंधे होते हैं, तो अंधों को बुलाया जाता है, बुलाते हैं श्राद्ध के दिन में खीर खाने के लिए। तो वो अंधे पूछते हैं खीर होती कैसी है। अब उनको कैसे बताया जाएगा, तो जिसने बुलाया उन्होंने कहा कि ये सफेद होती है। तो बोले सफेद कैसी होती है, वो भी तो अंधे है, कैसे देखेंगे उसको। तो बोले सफेद जो ना दूध जैसा होता है। अब ये दूध कैसा होता है, तो बोले बतख जैसा होता है। अब ये बतख कैसी होती है, तो उसने अंधे का हाथ पकड़ा, और बतख तो ऐसी होती है, तो अंधे का हाथ पकड़े ऐसे, बोला ऐसे टेढ़ी। बोले तो टेढ़ी होती है, बोला मैं नहीं खाऊंगा अभी खीर, गले में फंस जाएगी ये। तो बाहर से चला टेढ़ी खीर। तो ये कौन सी थिंकिंग बताई थी बहन जी ने, अभी आपने सुना ना सभी ने, तो ये कौन सी थिंकिंग थी। तो आज की मुरली 19/12/83 परमात्म प्यार निस्वार्थ प्यार। तो मेथड था जो ब्रेन स्टॉर्मिंग, अर्थात बुद्धि में थोड़ी हलचल होनी चाहिए, खलबली मचनी चाहिए, सुनने से कोई तूफान आना चाहिए अंदर में, जैसे एक झंझावत आना चाहिए, सुनामी आनी चाहिए, ताकि कुछ हम पुरुषार्थ कर सके। अगर वो नहीं आता तो जो मुरली है ना, वो सामान्य रूप से हम सुनते रहते हैं और हमारी लाइफ में इतने जोरदार तरीके से हमारे आचरण में नहीं इतना आ पाती है। इसलिए कुछ ना कुछ पॉइंट होते हैं मुरली में जो हमारे मन को झकझोर कर रख देते हैं। अगर वो पॉइंट झकझोरते नहीं है तो जो सुनाने वाला होता है कई बार वो ही झकझोर देता है, ऐसे पॉइंट प्रस्तुत करता है उसको। जैसे कोई भी अगर होटल में खाना जाते हैं तो वहां सिंपल खाना भी अगर नए तरीके से, जैसे पुरानी शराब होती है नई बोतल में पुरानी शराब कहा जाता है, पुरानी बोतल में नई शराब कुछ ऐसा कहा जाता है, तो हमारा पुरानी चीज को भी अगर नए तरीके से हम प्रस्तुत करते हैं तो उसका महत्व बढ़ जाता है। तो इसी तरह बाबा के महावाक्यों को अगर नए नए तरीके से हम अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो जरूर हमारी प्रगति होगी, हमारे जीवन में नवीनता आएगी, नई ऊर्जा का संचार होगा। तो ये जो मुरली थी इसमें परमात्म प्यार की जो 14 निशानियां बताई है, जो आपने अंग्रेजी में सुनी भी है, तो परमात्म प्यार अर्थात निस्वार्थ प्यार। अब बाबा जब इस धरा पर आए तो बाबा ने जो हमारे से प्यार किया तो निस्वार्थ प्यार कैसे किया, और हम कितने स्वार्थी हो गए थे, क्योंकि बाबा परम पवित्र हैं और हम आत्माएं कितनी बेकारी हो गई थी, बेकारों की दलदल में फंस गई थी, बेकारों की जैसे अंदर से सड़ांध आ रही थी और बाबा ने हमको पकड़ लिया आगे, कितना बेकारों के हम एकदम दुर्गंध आ रही थी, बदबू में पड़े हुए थे, और ऐसे समय पर बाबा ने हमको आकर पकड़ा, तो हमारा बाबा के ऊपर हमारा कितना उपकार हुआ, बाबा ने हमारे ऊपर कितना उपकार किया। बाबा के ऊपर उपकार नहीं, आप लोग रोक नहीं रहे। जैसे बहन जी ने बोला सांप ने हाथ को हाथ लगाया वो। तो बाबा का हमारे ऊपर कितना उपकार हुआ कि नहीं हुआ। तो ये निस्वार्थ प्यार। फिर बाबा ने कहा ये जीवन कौन से जीवन का आधार है, ये श्रेष्ठ जो जीवन है इसका आधार है परमात्म प्यार। अगर हमारे जीवन में परमात्म प्यार ही नहीं होता तो हम जीवन में आगे बढ़ भी नहीं पाते, खुशी भी नहीं होती, ऐसे नीरस जीवन रहता है। जो 5 नंबर का प्यार बताया था कौन सा था, जो परमात्म प्यार अगर नहीं है तो जीवन नीरस सूखे गन्ने के माफिक हो जाती है। तो परमात्म प्यार है जो हमारा जीवन कैसा हो गया, गन्ना जो सूख गया तो वो हरा भरा हो गया, एकदम रसदार हो गया। तो ये परमात्म प्यार जो हमारे ऊपर हमेशा बरसता रहता है, और ये परमात्म प्यार है तो जीवन कैसा हो गया, निरंतर योगी स्वतः योगी हो गया, जीव दान हो गया, है ना। इस परमात्म प्यार से भगवान स्वयं साथी बन गया, हमेशा साथी बनकर वो साथ निभा रहा है। और इस परमात्म प्यार से कितने मंजिलें ऊपर पार चले गए हम, 3 प्रकार की, उसमें भी 3 प्रकार की मंजिल में 14 पॉइंट आगे बताए। फिर पहली जो मंजिल थी देवान की विस्मृति, उसमें 5 बातें बताई, कौन कौन सी हम तो बताएंगे ही, लेकिन ब्रेन स्ट्रॉमिंग तो खाली सबका होना चाहिए ना, तो एक व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन सा बताया था, अगर जो देहबान की विस्मृति है तो क्या क्या होगा, ये जो देहबान है कैसा हो गया था, पुराना चत्तियों जड़जड़ीभूत हो गया है, अंतिम जन्म है और इसमें अनेक प्रकार की चत्तियां लगी हुई है, तो ये। और दूसरा देह के रिश्ते हमारे कैसे हो गए थे, देह के रिश्तों से विस्मृत होगी। और तीसरा जो मन स्वार संस्कार थे, वो स्वार संस्कार पुराने स्वार संस्कार के अंश वंश सब खत्म हो गया। और तीसरा मन की चंचलता समाप्त होगी। चौथा पांचवा बुद्धि की जो भटकने की आदत पड़ी थी वो खत्म होगी, कैसे बाबा की याद से, बिल्कुल ठीक बोला आपने, हाँ बाबा की याद में। तो ये देवान की विस्मृति हुई तो हमको ये हो गया। और फिर दूसरा था संबंध, तो संबंधों से क्या क्या होता, सुख शांति की चैन छिन गया। और दूसरा व्याधियां, अनेक प्रकार की जो व्याधियां थी, नहीं व्याधियां तो पहले थी वो देह में थी, ये संबंधों में, संबंधों में व्याधियां नहीं है, मोह माया का जाल है, इधर की दवाई उधर नहीं लेना, आप एक मरीज की दवाई दूसरे मरीज को देंगे तो कैसे हाल होगा। तो उसमें था, एक तो सुख शांति का चल गया, फिर दूसरा जो भाई भाई बन गए तो वो दुश्मन बन गए हमारे, है ना। और तीसरा था संबंधों में आने से मोह की जाल में फंस गए और स्वार्थवश हो गए, तो स्वार्थवश दुश्मनी है। और फिर है ये संबंध जो लेने वाले ही है, देते नहीं है, चाहे पुण्य आत्मा महान आत्मा संसार में जितने भी हुए सब देने लेने वाले ही है, लेकिन बाबा हमेशा दाता है, क्योंकि उदातापन है उसमें, देने के संस्कार के सिवा दूसरे संस्कार ही नहीं है, निस्वार्थ प्रेम, बिल्कुल ठीक बोला। और चौथा तीसरी बात जो बताई पदार्थ, तो ये पदार्थ कौन से थे, विषय भोग के पदार्थ थे, विष के समान हो गए थे, इन पदार्थों के जाल में मनुष्य फंस चुका था। और इन पदार्थों से और क्या क्या हो गया, दो बातें और बताओ अभी कौन सी है, आकर्षण, अल्पकाल के प्राप्ति के आकर्षण भी इसमें, उससे भी हमको बाबा ने कौन कौन से पदार्थ दिए, कखपति से लखपति बन गए, तो अब पति जो होता है कखपति थे पहले थे ना, अब लखपति बन गए, पद्मा पद्म पति बन गए, माना एक एक बाबा कहते हैं ना वर्षन पद्मों समान नहीं लाखों समान बाबा कहते हैं, इसलिए लखपति, एक एक वर्षन लाखों समान कहते हैं, तो ये बन गए। तो ये परमात्म प्यार हमारे ऊपर कितना सहज तरीके से बरस रहा है। और उसके आगे क्या बताया बाबा ने, परमात्म प्यार जो है ये सर्प जानों की चाबी है, और ये परमात्म डबल राज्य भाग्य दिलाता है। संसार में जो स्नेह होता है विनाशी स्नेह, विनाशी स्नेह भी संसार में श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन उस विनाशी स्नेह से क्या हुआ, संसार में अनेक राजाओं ने अपना राज्य भाग्य गवा दिया, लेकिन ये अविनाशी स्नेह है, परमात्म स्नेह है, निस्वार्थ स्नेह है, तो इससे क्या हुआ, हमारा डबल राज्य भाग्य बन गया, जमा हो गया, 21 जन्मों के हमारा बेड़ा पार हो गया। तो ये चीज थी। और क्या था इसके पहले, दातापन के, हाँ वो दाता बताया ना कि संबंधों के, वो तो लेने वाले है लेकिन भाग्य भी दाता हमेशा दाता बनकर हमको दे रहा है। तो और ये परमात्म प्यार है हमको बाप के समीप लाता है, समान लाता है, सर्व समर्पण कर देता है, बाप समान बना देता है। तो ये थे ब्रेन स्टॉर्मिंग के कुछ पॉइंट। अभी जो आगे खतरनाक पॉइंट है वो बताएंगे दोनों ही, कमलेश भाई और अरविंद भाई।
ओम शांति। तो अभी हम बाबा के आज के मुरली का सेकंड भाग देखेंगे। इस ब्राह्मण संसार में हम सभी वाचा सेवा और कर्मणा सेवा में बहुत इन्वॉल्व हो गए हैं, तो बाबा चाहते हैं कि समय और परिस्थिति अनुसार जो तीसरी सेवा है उस सेवा में हम सभी के जीवन में एक परफेक्शन आए। उसके लिए बाबा ने कौन कौन सी बातें हम सभी को सिखाई हुई है, मनसा सेवा, सकास की सेवा। तो मनसा सेवा कौन कर सकता है, कोई भी, कैसे, मनसा सेवा करने वाले की क्वालिटी क्या होगी, उसमें कौन कौन से क्वालिफिकेशन उसमें होंगे,
ये प्रश्न अब बताओ इसका उत्तर।
हाँ जी, उसका मन एकाग्र होगा, उसके सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना होगी, और जिसका एक बाप से सच्चा प्यार होगा, जिसका लक्ष्य एक होगा, जो विश्व कल्याणकारी की भावना से ओतप्रोत होगा, और शिव बाबा से लगन होगी, और कुछ खास खास बातें रह गई हैं,
और उसका लक्ष्य होगा कि हमको करना ही है,
उसका लक्ष्य होगा कि हमको करना ही है। उसके पास क्या होगा,
सारे उपकरण होंगे उसके पास,
वो पहले स्वयं ही सब खजानों से भरपूर होगा, जिसके पास कुछ नहीं होगा तो वो दूसरों को भी क्या दे सकेगा,
लेके देना पड़ेगा।
तो बाबा ने इस मुरली में कहा है कि जो अभी समय जो आने वाला है वो बहुत ही क्रिटिकल समय है, तो उस समय आप वाचा सेवा या स्थूल सेवा नहीं कर सकेंगे, उस समय आपको मनसा सेवा या सकास की सेवा करनी पड़ेगी। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि अभी से आपको उसके लिए अभ्यास करना है। क्या अभ्यास करेंगे, कैसे, तो उसके लिए बाबा ने कहा कि आप अपने अभी से उठती कला के आसन पर विराजमान होकर के अपने फरिश्ता स्वरूप द्वारा संसार की परिक्रमा करो, अभी से जो अभ्यास करो, ये पुरुषार्थ करो कि संसार में जहां भी कभी भी कहीं भी कोई भी समस्या कोई परिस्थिति है, चाहे प्राकृतिक समस्या है या फिर सामाजिक कोई आपस में टकराव मनमुटाव कोई समस्या है, तो ऐसे समय पर वहां जाकर के उन आत्माओं को सकाश देने का ये कार्य करना है। तो उस समय संसार में कौन कौन सी बातें होती हैं, जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है या कोई सामाजिक टकराव होता है, उस समय क्या होता है, समाज में हलचल होती है, भय होता है, अशांति का माहौल होता है, उस समय लोग दुख में होते हैं, हर एक के नेगेटिव थॉट्स चल रहे होते हैं, तनाव में होते हैं, भोजन पानी का अभाव होता है, चोरी होती है। तो बाबा का उस समय जाकर के जो आत्माओं की मानसिक स्थिति है, चिंता भय अशांति टेंशन असंतुष्टता का, उस समय आत्माओं जाकर के शांति सुख खुशी संतुष्टता का उनको अनुभव कराओ, और वो आत्माएं अनुभव करें कि ये फरिश्ते जो आए हैं इन्होंने से हमको शांति शक्ति खुशी की प्राप्ति हुई है, अनुभूति हुई है। तो बाबा ने कहा कि इससे आप जो शक्तियां हैं उन शक्तियों की प्रतिष्ठा होगी, शक्तियों के बारे में गीत गाएंगे कि शक्तियों को हमने देखा, और शक्तियों से तभी बाप प्रत्यक्ष होगा। जैसे साकार बाप ने ब्रह्मा बाबा ने, जैसे ब्रह्मा बाबा ने अभ्यास किया, ब्रह्मा बाबा ने क्या अभ्यास किया था, रात रात भर जाग करके, कब क्यों किसके लिए, तो बाबा का जब भी कोई संसार में ब्राह्मण संसार में या लौकिक संसार में ऐसी कोई घटना घटती थी जिसमें दुख की अशांति की तनाव की लहर हो, उसमें बाबा रात रात भर जा करके उन आत्माओं को सकाश देते थे, उन आत्माओं को सहयोग देते थे। तो इसी प्रकार से हम जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, ब्रह्मा के बच्चे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम बाप सम्मान बनकर के उन आत्माओं को सकाश दें। और बाबा ने कहा कि आप जो सेवा करेंगे तो इससे आपको बहुत सारे फायदे भी होंगे। कौन कौन से फायदे होंगे, आप बिजी हो जाएंगे, आपके जीवन में व्यक्ति रहेगा, और क्या होगा, अपना खाता स्वतः भरेगा, क्योंकि देने में लेना समाया हुआ है। तो बाबा कहते हैं अभी आप जो अभी यदि आप देंगे तो देने में लेना स्वतः समाया हुआ है, क्योंकि वर्तमान समय आप केवल लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन यदि आप सकाश देने का काम करेंगे तो उससे आप आपके पास दुआएं मिलेंगी, और जो आप दूसरों को देंगे उसका भी स्टॉक आपके पास बढ़ता रहेगा। और एक बात बाबा ने खास कही है, वो बात कौन सी कही है मुरली में,
वो धारणा करेंगे तो एकदम प्रसाद हमारा उड़ जाएगा फटाफट, चल वो पुरुषार्थ के लिए बहुत जरूरी है,
एक बात दूसरा ना कोई और,
पुरुषार्थ मार्ग में आगे बढ़ने के लिए वो धारणा हमको बड़ा प्रयास करना पड़ता है, लेकिन वेद की सेवा में बिजी रहेंगे तो ये आ जाएगा और पुरुषार्थ बढ़ जाएगा।
ब्राह्मण जीवन में क्या चाहिए, अभिमान,
बेहद का वैराग्य।
बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन में बेहद का वैराग्य चाहिए, और बेहद का वैराग्य कब आएगा, जब बेहद की सेवा में बिजी रहेंगे, क्योंकि बेहद की सेवा में बिजी रहने से हमारा बुद्धि जो है मन बुद्धि जो है वो हमेशा बेहद में रहता है, नहीं तो वैसे व्यक्ति का जीवन में हम देखें तो उसका मन बुद्धि हमेशा छोटी छोटी बातों में इन्वॉल्व रहता है, लेकिन जब हमारा लक्ष्य रहेगा कि हमको बेहद की सेवा करनी है, सकाश देनी है, आत्माओं को देखना है, उनकी स्थितियों को देखना है, उनको समझना है, तो उससे हमारा अंदर में स्वतः ही बेहद का वैराग पैदा होगा, इमर्ज होगा। तो बाबा ने कहा कि बेहद का वैराग लाना है तो उसके लिए बेहद की सेवा में इन्वॉल्व रहो। और बाबा ने कहा कि बेहद की सेवा करने के लिए साधारण रूप में रहकर के आप बेहद की सेवा नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसके लिए साक्षी होकर के जो समस्याएं हैं, जो देह की समस्याएं हैं, दुनिया की समस्याएं, उन समस्याओं को देखते हुए बेहद में रहकर के बेहद की सेवा करनी है। तो ये कुछ खास बातें थी, हाँ बेहद की सेवा में आज की सेवा समाई हुई है, जो कुछ बातें थी जो बाबा ने मनसा सेवा के लिए कही हुई है। ओम शांति।
ओम शांति। मुरली का टाइटल ही है परमात्मा प्यार निस्वार्थ प्यार, तो ये प्यार अतुलनीय है, हम तुलना नहीं कर सकते, और वो कैसा प्यार है सुशील भाई ने भी बताया, अरविंद भाई जी ने भी उसके अगले स्टेप्स बताए। तो ये जो लास्ट के तीन पैराग्राफ है इसमें बाबा ने विधि बताई है, बाबा ने हमें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया है, समय के प्रति जागरूक किया है और बाबा ने हमें कुछ स्वमान दिए हैं कि आप सुखदाता के बच्चे हो, आप पूज्य आत्माएं हो, आप देव आत्माएं हो, तो आपका कर्तव्य क्या है, आपका योग कैसा हो जो आपको देखकर कैसे विश्व में उसकी लहर फैले, फिर आपका परमात्म प्यार कैसे हो जो औरों को भी लगे कि हाँ हमें भी भगवान से ऐसे प्यार करना चाहिए। तो ये जो मुझे पैराग्राफ मिला है उसकी शुरुआत है कि ज्ञान के मनन के साथ साथ शुभ भावना और शुभ कामना। अभी कुछ सिचुएशन या परिस्थिति आती है तो ज्ञान तुरंत याद आता है, क्योंकि ज्ञान क्या है, अजर अमर अविनाशी है ना, ज्ञान तो अविनाशी है। भले बाबा को छोड़ के भी चले जाते हैं तो भी ज्ञान तो बुद्धि में होता है, तो ज्ञान की पॉइंट तुरंत याद आ जाती है। कुछ सिचुएशन होती है तो कहते कि हाँ ये ड्रामा में था, हाँ मेरा कुछ कार्मिक अकाउंट होगा उस आत्मा के साथ, इसलिए मेरे से ऐसे दुर्व्यवहार किया। और ये सबसे ज्यादा ज्ञान तब याद आता है, खुद की सिचुएशन से ज्यादा, जब पड़ोसी के साथ कुछ होता है ना, हाँ इसका एक्सीडेंट हुआ, इसने कल ही ऐसे कर्म किया था, उसका उसको आज ये रिजल्ट मिला है। तो ज्ञान है, ज्ञान हम लिखते भी है, मुरली में वरदान आया उस लिखा और सामने वो सिचुएशन घटी और हमने उसका तुरंत जवाब भी दे दिया। आज का स्लोगन भी है ना कि मर्यादा के कंगन पहन लो तो आप सर्व बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, तो हम सुना भी देंगे हाँ तुम्हारे ऊपर बंधन है ना क्योंकि तुम इस मर्यादा का उल्लंघन करता है, बड़े फकूर से बड़े हम अथॉरिटी से सामने वाले को सिखा देते वो बात क्या अभी अभी मुझे कोई सिखा के गया है अरे ये तो माया है, अरे ये मोबाइल तो माया है, दूसरों को सिखाने के लिए कितना इजी होता है। लेकिन बाबा ने कहा है इस ज्ञान के मनन के साथ साथ शुभ भावना और शुभ कामना। जरूरी नहीं है कि सामने वाले को तुरंत ज्ञान सुना के सिखाए वाणी द्वारा, लेकिन हमारे कर्मों द्वारा। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि पहले तो क्या रखो, शुभ भावना शुभ कामना रखो। फिर बाबा ने अगली पॉइंट कहा कि मन का मौन। बाबा ने कहा ज्ञान का मनन चिंतन करो, शुभ कामना शुभ भावना रखो, शुभ भावना रखना, शुभ कामना रखना ही उसके सकाश देना है। सकाश देना माना सिर्फ ऐसी किरणें आ रही है, ऐसी जा रही है, ये विजुअलाइजेशन ही नहीं, लेकिन उसकी स्टेप क्या है कि मन में वो उसके प्रति वो संकल्प निकले, हाँ न कि बस ऐसी किरणें आ रही ऐसी जा रही, उससे कुछ नहीं होने वाला है तो शुभ भावना और शुभ संकल्प। माना हम टीवी के सामने बैठे हुए हैं, भले अभी मेरी भी सिचुएशन नहीं है, पड़ोसी की भी नहीं है, टीवी के सामने हम बैठे हैं और देख रहे हैं कि कहाँ पे भूकंप हुआ, प्राकृतिक आपदा, या कहीं पर मनुष्य की जो मन की जो विक्षिप्तताएं हैं उसके कारण कुछ घटा, तो तुरंत हम कहते हैं अरे बेचारा, या जिसने किया उसके प्रति इसको तो ये सजा देनी चाहिए, उसको तो वो सजा देनी चाहिए। तो ये जो भाव अंदर से निकलते हैं वो हमारे नहीं निकलने चाहिए, हमारी शुभ भावना हाँ शुभ कामना की निकलनी चाहिए। तो बाबा ने कहा कि मन का मौन। अभी बाबा ने कहा कि अपना एक क्या करो, ये जो ट्रैफिक है ना पूरा, खुद के संकल्पों का भी, पड़ोसी के, और दुनिया में भी जो चल रहा है हलचल, ये जो ट्रैफिक है उसके बीच में बाबा ने कहा है कि मन का मौन। अभी मौन हमने देखो भक्ति में भी किया था, भक्ति में भी मौन रखते हैं। बाबा भी उनका उदाहरण देते हैं कि वो भोजन बनाते समय मुंह में कपड़ा बांधते हैं, भोजन करते समय भी भक्ति मार्ग में मौन रखते हैं। हाँ, और यहाँ आने के बाद भी हम मौन रखते हैं। और फिर और मौन बाबा ने अगली स्टेप मौन की बताई है कि मन का मौन, कि मन के मौन की बात, एक मन का मौन कोई करने की बात नहीं है, ये तो एक स्थिति है, एक आउटपुट है कि हमारी स्थिति इतनी लेवल पे चली जाए कि हम कितनी भी हलचल के समय में स्थिर रहे, शांत रहे। तो मन का मौन माना एक धैर्यता है, शांति है। जो बाबा ने कहा भले आप बिजी हो, अभी जो मधुबन में है जो समर्पित है वो कर सकते हैं, अगर कोई कहेगा कि नहीं हमारा तो ये हमारा जॉब का टाइम है, फिर घर में आने के बाद हमें ये करना है, हमें संबंध संपर्क में आना पड़ता है, हम कैसे मौन रखेंगे। तो बाबा ने कहा कि आपको वीकली एंड तो है, वो वीकेंड जो है वो छुट्टी का दिन है, उसका कुछ प्लानिंग बनाओ, ऐसा प्लानिंग बनाओ, ऐसे मन का मौन रखो जो आप एकांत में चले जाओ, और एकांत के साथ साथ इकोनॉमी। तो मैंने कभी एक स्लोगन सुना था कि वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का था कि बिजली का जो स्रोत है, बिजली की बचत ही बिजली का एक नया स्रोत है। तो इस स्लोगन दुनिया वालों ने बनाया हुआ है, लेकिन देखो बाबा ने हमें कहा है कि कौन से खजाने हैं जो लीकेज हो रहा है, उसको कैसे हमें इकोनॉमी करना है, बचाना है, और वही आपका क्या बनेगा, ऊर्जा का एक नया स्रोत बनेगा। तो फिर हाँ, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गई ना, मन का मौन पता चला, फिर ज्ञान के मनन के साथ शुभ भावना। हाँ, तो इस मुरली में ना बाप दादा को बहुत रहम आ रहा है। किन के ऊपर रहम आ रहा है? दुनिया वालों के। तो अब बताओ बाबा को क्यों रहम आ रहा है? बाबा रहम का सागर है। हम बच्चों के ऊपर नहीं रहम आ रहा है, पूरे विश्व की। हाँ, दुनिया में जो मन का दुख है, अशांति है, हलचल है, वो देख करके बाबा को क्या हो रहा है? रहम आ रहा है। बाबा ने कहा आप तो शांत हो गए है ना, लेकिन अभी उस दुनिया वालों को देना भी है, वो भी आपका कर्तव्य है। आप कौन हो? पूज्य आत्मा हो, आप देव आत्मा हो, इसलिए बाबा हमें अपने स्वमान, हमारे कर्तव्य यहाँ पर याद दिला रहे हैं। फिर अगले पैराग्राफ है, बाबा ने वहां पर साइंस का उदाहरण दिया है कि साइंस वालों ने बहुत इन्वेंशन तो की है, अच्छे अच्छे साधन तो बना दिए हैं, उनको लगता है कि पूरा टोटल इनको सुख मिल जाए, लेकिन बाबा ने कहा कि देखो वो जो साधन बनाने वाले हैं वही सुखी नहीं है, तो वो दुनिया का दुख कैसे दूर कर सकेंगे। मानो अभी किसी को कोई वस्तु चाहिए और वो किसी को मांग रहा है, एक भिखारी दूसरे भिखारी को मांग रहा है, क्या दे सकेगा? कुछ भी नहीं। तो उसी तरह तो वो जो बात है कि किसी को देना है तो हमारे पास कुछ चाहिए, तो बाबा ने कहा कि आपके पास है, तो क्या है? कौन सा स्टॉक बताया बाबा ने? आपके पास क्या क्या है? सुख, शांति और निस्वार्थ प्यार। हाँ, तो क्या होता है कभी कभी है ना, हमें सौगातें मिलती जाती है, और वो क्या होता है, हम रखते जाते हैं। अभी मानो एक पेन मिला, मुझे पेन मिला, रख दिया अलमारी में, फिर और कुछ मिला, तो हम क्या करते हैं, अपनी स्टॉक स्टोर में रखते जाते हैं, और हम ही खुद ही भूल जाते हैं कि हाँ ये मेरे पास है। तो आज बाबा ने हमें स्मृति दिलाई है कि हाँ आपके पास है, ऐसे नहीं कहना है कि नहीं है, मेरे पास सुख, शांति और क्या है, निस्वार्थ प्यार अंदर है, इसलिए मुझे देना है, और ये देने से ये खजाना बढ़ने वाला है। हाँ, तो वो है, तो उसको प्रैक्टिकल में लाना है, देना है। तो फिर बाबा ने आगे कहा कि स्पेशल अपने पास ऊपर अटेंशन दो, स्पेशल अटेंशन दो, कि बाबा ने कहा कि जैसे एक टावर है, टावर के ऊपर सर्च लाइट लगा हुआ है और वो सबके ऊपर सबको मार्ग दिखा रहा है। इससे एक स्टोरी याद आती है, एक बच्चा अपने पिता के साथ जा रहा है और वो पूछता है कि बाबा भगवान कितना बड़ा है, तो उसके पिताजी उसको बताते हैं वो जो एरोप्लेन जा रहा है ना ऊपर से उतना बड़ा है। बोलता है इतना छोटा? तो वो उसको ना जाते जाते रास्ते में ही एयरपोर्ट होता है, तो वहां पे वो उसको लेके जाते हैं और वहां दिखाते हैं पार्किंग में कि देखो ये जो है ना ये एरोप्लेन होता है। तो एरोप्लेन तो उसकी तो साइज कम ज्यादा हुई नहीं, लेकिन वो डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है। तो यहां भी बाबा ने जो उदाहरण दिया है कि आप क्या बन जाओ, लाइट हाउस, वहां से आप लाइट माइट फैलाओ। तो हमें भी अभी हम कहां बैठे हैं? सतगुरु के शिखर पर बैठे हैं। अभी हम कहां बैठे हैं? स्वीट के पहाड़ पर, स्वीट साइलेंस के पहाड़ पर बैठे हुए हैं। इसलिए क्या है, खुश है, हल्के है, मधुबन में है। हमारे लिए वो परिस्थितियां उधर की उधर ही है, दूरी है। उसी तरह बाबा ने कहा कि बीच बीच में टाइम निकालो और बाबा ने उस टाइम भी बताया कि कम से कम 4 घंटा आप क्या करो, उस दुनिया से डिटैच होके मधुबन में पहुंच जाओ, उस टावर पे पहुंच जाओ और लाइट माइट फैलाओ। अभी आप हम कहेंगे नहीं हमारे में ही नहीं है, तो बाबा ने बताया कि आपके पास है, थोड़ा सा ऊपर की जो सौगातें मिली हुई है ना उसको थोड़ा हटाओ तो वो अविनाशी सौगात जो नीचे पड़ी है ना वो मिल जाएगी। फिर बाद में बाबा ने पूछा है कि महातपस्या कौन सी है, तो कौन सी है महातपस्या? तपस्या है, बाबा ने कहा महातपस्या एक ही बाप दूसरा न कोई, ये है महातपस्या। तो बाबा ने अगला प्रश्न पूछा है कि जिस तपस्या के बल से क्या होगा, विश्व का परिवर्तन होने वाला है। तो हमें और क्या क्या याद आता है, व्यक्ति वस्तु और कौन सी बातें हैं, कि कल उस सीरियल में उस एपिसोड में ये हुआ था और आज क्या होने वाला है। बाबा ने यहाँ कहा है कि एक बाप दूसरा न कोई, तो एक बाप दूसरा न कोई तो ये क्या बन जाएगा, एक श्रेष्ठ बल बन जाएगा और उससे ही बाबा ने कहा कि विश्व का परिवर्तन होगा। फिर वरदान में बताया कि जमा का खाता कैसे बढ़ेगा, जैसे कि हंस का एग्जाम्पल दिया बाबा ने, हंस क्या क्या करता है, हमने अभी अभी वो 16 बातें सुनी। तो हंस क्या करता है, बाबा ने जो बताया कि कंकड़ और मोती, तो जो व्यर्थ बातें हैं उनको कैसे इग्नोर करना है और जो मोती है उसको कैसे चुगना है वो यहाँ पर बाबा ने बताया। तो बाबा ने कहा व्यर्थ तो बहुत समय से सुना बोला और व्यर्थ में बहुत टाइम गवाया, तो अभी ये जो समय चल रहा है वो कौन सा समय चल रहा है, जमा करने का समय है। और स्लोगन में बाबा ने कहा कि मर्यादाओं का कंगन आप पहन लो तो क्या होगा, सर्व बंधनों से मुक्त हो जाएंगे और एक दिन आएगा कि इस देह के बंधन से भी मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।